लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साधी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। आप सभी अभी भी तपस्या में ही बैठे थे। तपस्या करना और तपस्वी मूरत बनना, इसमें अंतर है। तपस्या करना वो थोड़े टाइम के लिए है, 2 घंटा किया, 6 घंटा किया, 8 घंटा किया, लेकिन तपस्वी मूरत बनना, जब मूरत बन गए, तपस्या स्वरूप बन गए, तो स्वरूप सदा होता है, 8 घंटा या 6 घंटा या 10 घंटे का नहीं होता है। तो हम सभी सिर्फ तपस्या करने वाले नहीं है, योग लगाने वाले नहीं है, लेकिन योगी जीवन वाले। तो जीवन सोते हुए भी है, उठते हुए भी है, चलते फिरते या काम काज करते, जो भी कार्य है हमारे निमित्त बना हुआ, वो सब करते हुए भी योगी जीवन है। तो योगी जीवन माना सदा काल की जीवन, जीवन का घंटे मुकरर नहीं होते। जीवन तो जब तक जीते हुए है तब तक जीवन। तो हमारी तपस्या या योग सिर्फ हम जब ऑफिशियल बैठते हैं, ये जरूर है कि बैठते हैं हम संगठन में और बाबा के निश्चित समय पर बैठते हैं, तो वायुमंडल का बाबा के टाइम फिक्स देने से उस समय बाबा की विशेष मदद भी होती है, वो भी जरूरी है। जैसे अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा है, शाम के समय निमा शाम को कहा जाता है, उस समय बाबा ने विशेष हम सबके लिए डायरेक्शन दिए हुए हैं, लेकिन बाबा ने साथ में कर्म योगी शब्द भी कहा। कर्म योगी का अर्थ ये नहीं है कि जब योग लगाए तब योग हो और कर्म करे तो योग खत्म हो जाए या समा जावे, इमर्ज रूप में नहीं हो। कर्म योगी है अर्थात जो भी कर्म हम करते हैं, देखना, सोचना, बैठना, चलना, जो भी कर्म करते हैं, लेकिन हम कर्म योगी है। कर्म अलग नहीं है, योग अलग नहीं है, योग और कर्म दोनों ही कंबाइंड है, साथ साथ है। नहीं तो बाबा सिर्फ कहता आप योगी हो, लेकिन बाबा योगी सिर्फ शब्द नहीं कहता है, बाबा शब्द ही कहते हैं कर्म योगी हो। तो कर्म योगी, कर्म आप सोते हुए भी, आप हिलते जुलते तो रहते हो ना, पता नहीं पड़ता है सोने में, लेकिन हिलते जुलते हैं, कभी बाह ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, दूसरे को तो देखते हैं ना, तो कर्म तो करते हैं ना, उसमें सोते हुए भी तो करते हैं, कोई आवाज निकालता है सोने में, कोई क्या करता है, लेकिन कर्म तो हो रहा है ना, काम तो हो रहा है, कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कुछ करते हैं उसको हम कर्म कहते हैं। तो कर्म के बिना तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। ये आंख का हिलना ये भी कर्म है। आप सोचो कभी आप आंख को हिलाओ नहीं, आपको हिलाना नहीं पड़ता, आप ही हिलती है, लेकिन आंख कर्म तो कर रही है ना। तो कर्म योगी माना सदा का योगी। कोई भी कर्म करो तो योग और कर्म साथ में। तो हम तपस्वी है, योगी है वह तपस्वी है। तो तपस्या हमारी कुछ घंटों की नहीं होनी चाहिए। तपस्या स्वरूप है, हमारा स्वरूप ही तपस्वी है। क्योंकि तपस्या का अर्थ ही है, तपस्वी जब भी बैठते हैं तो आपने देखा होगा हठ योगी वो तो तपस्वी है, हठ योगी। हम तो राजयोगी है, हम कोई हठ योगी नहीं है। लेकिन वो हठ योगी तपस्वी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर बैठेंगे तो एक टक बैठ जाएंगे, एक टांग पर खड़े होंगे तो खड़े ही होंगे, है फालतू ये। लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प करते हैं हमको ऐसा करना है। तप, ये तप कहा जाता है, तपस्या एक तप है। तो उनका तप ये है, एक टांग पर खड़े रहना, आंखें बंद करके गुम हो जाना, जैसे बेहोशी की लाइफ होती है, उनको कुछ पता नहीं पड़ता है शरीर का। हमको बाबा कहते हैं ऐसा तपस्या नहीं करनी है। अशरीरी का अर्थ ये नहीं है कि हम तपस्या में बैठे हैं, योग में बैठे हैं, योग में बैठे हैं और कोई मक्खी हमारे पास आती है तो हमारा नेचुरली हाथ जाएगा, वो हमारे योग को नीचे नहीं लाए। यानी छोटी सी मक्खी हमारे तपस्या को डगमग करे वो नहीं होना चाहिए। बाकी पता क्यों नहीं पड़ता है, कोई अनकॉन्शियस है क्या हम? अच्छा मक्खी बैठी है या टांग थोड़ा दर्द करता है, ऐसे कर लिया तो कोई हमारा हठ योग थोड़ी है। लेकिन तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। यानी बुद्धि जो है वो टांग में, हाय दर्द हो रहा है टांग, पता नहीं मेरे को क्या हुआ है, तपस्या करने नहीं देती है टांग, क्या बाबा ये कर्म भोग है ये। अभी टांग सिर्फ हिला दो या ये बैठ के सोचो, तो ये समझो आपकी तपस्या जो है ना वो भंग किया बक्खी ने। या कोई भी चीज समझो, खुजली होती है, कुछ भी होता तो है ना। अभी आप डेढ़ घंटा बैठेंगे कुछ भी नहीं होगा क्या? लेकिन मतलब अशरीर का ये नहीं है कि शरीर से निकल ही जाओ, शरीर का कुछ पता ही नहीं पड़े। शरीर में कुछ भी हो लेकिन हमारी तपस्या भंग नहीं हो, उसके प्रति विचार नहीं चले, ये मक्खी क्यों आई, ये गर्मी है क्यों नहीं पंखा चल रहा है, पंखा हो तो भी ये पसीना नहीं आवे, समझो फालतू संकल्प चल गया। चलते तो संकल्प व्यर्थ जो है वो बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत तेज। व्यर्थ संकल्प की रफ्तार बहुत तेज होती है और शुद्ध संकल्प की जो रफ्तार होती है वो ढीली होती है। आप मनन करने बैठेंगे ना, आज मुरली में बाबा ने ये पॉइंट बहुत अच्छी बोली, सोचेंगे ज्ञान क्या मनन की बात, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद वो ट्रेन की लाइन जो है वो बदली हो जाएंगी, व्यर्थ में चले जाएंगे, मनन वही रह जाएंगे। क्यों? कि ज्ञान का मनन, ज्ञान शुद्ध संकल्प की धीमी गति होती है और अभ्यास चाहिए इसमें एकाग्र होने का। और ये जो व्यर्थ संकल्प है उसकी गति बड़ी फास्ट होती है। अगर आप नोट करो ना, कभी आपका कोई के प्रति भी, कोई बात के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति व्यर्थ संकल्प जो चलेगा, या कोई बात के लिए या कोई व्यक्ति के लिए, आप एक मिसाल अपना सारे दिन में अगर होता हो तो नोट करो कितना समय और कितनी फास्ट हमारे व्यर्थ संकल्प चले, और इतने फास्ट व्यर्थ संकल्प चलेंगे, ऐसा क्यों, ये क्यों, क्या क्यों, क्या क्यों, क्या क्यों, क्या फास्ट चलेंगे। तो उस समय बाबा कहते हैं आपकी तपस्या नहीं, यहाँ तपस्या में बैठे बैठे भी व्यर्थ आ जाता है का, समझो यहाँ से कोई आया बैठे योग में है, लेकिन हम देखते हैं आधा क्लास जो है ना वो उस तरफ देखेगा, जैसे उन बिठे आपकी ड्यूटी है वो आया क्यों है और उसको कहाँ बिठाना है, ड्यूटी है नहीं आपकी, ड्यूटी थोड़ी है कोई यहाँ से आया या गया, इसमें हमारा क्या जाता है, आपको ड्यूटी दी है क्या, गिनती करो कोई आया कोई गया या ये हुआ। लेकिन मैं देखती हूँ आधा क्लास कोई आएगा ऐसा कानूंगा, ऐसे के बजाय ऐसा कानूंगा, ऐसा कानूंगा, ये क्या है, संकल्प चला दू तभी तो कांद हुआ, ऐसे ही तो कांद हो जाता है क्या। तो ये व्यर्थ संकल्प की गति जो होती है ना वो बड़ी फास्ट होती, इसीलिए तपस्या माना मन की एकाग्रता, एकाग्रता माना एक ही तरफ मन लगा रहे। वो लोग जो होते हैं तपस्वी वो पांव या टांग या ऐसे बैठेंगे ऐसे कांगे ऐसे करेंगे, पोज जो होते हैं ना बिन बिन, वो उसमें एकाग्रता करते हैं। लेकिन हमारा एकाग्रता है मन को एकाग्र करना, बस एकाग्रता माना एक में बुद्धि लगी रहे, मन लगा रहे, ये है एकाग्रता। और दूसरी बात आपने देखा होगा तपस्वी जो होते हैं वो एकांत में बैठते, अभी आप कर्म योगी एकांत में सारा दिन नहीं बैठ सकते हैं, कर्म योग है तो एकांत में थोड़ी बैठेंगे, कनेक्शन में तो आएंगे ना, दफ्तर में बैठेंगे तो एकांत तो होंगे क्या, फैक्ट्री में होंगे तो फैक्ट्री में कनेक्शन में तो आना पड़ेगा थोड़ी। लेकिन यहाँ एकांत का अर्थ है एक के अंत में रहना, ये है एकांत, एक के अंत में रहना, यानी शिव बाबा जो एक है उसमें हमारा मन और बुद्धि का लगन एक ही तरफ लगा रहे, उसके अंत में, किसी भी बात के अंत में आप जाते हो, डीपनेस में जाते हो, तो आपका मन और बुद्धि कितनी उस तरफ बिजी होती है। मानो आप खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो तो मुख में ही डाल रहे हो ना, मुख के बजाय और कहाँ तो नहीं डालते हो, लेकिन खाना खाते खाते आप कोई और डीप विचार में है, होता है कई बार ऐसे बुद्धि और कहाँ विचार में चली जाती है, कोई बात होती है देखी है सुनी है, और आपसे कोई पूछता है कि भाई जी आपने खाना तो खाया लेकिन खाना आज नमक ठीक था मीठा ठीक था, तो आप सोचेंगे हाँ नमक ठीक था देखता हूँ, अभी नमक तो खा रहे थे ऐसे थोड़ी तो फीका खा रहे थे, नमक वाला ही तो खा रहे थे, लेकिन आपका मन और बुद्धि उस बात में बिजी था, बात में बिजी होने के कारण मन एकाग्र नहीं था, खाने में नहीं था, भाई बाबा को भी खिला रहा हूँ मैं भी अपने भोग लगा रहा हूँ इस आत्मा को, ये नहीं था। लेकिन आप खाना खाते कोई और विचार में चले गए, चलो अच्छा विचार हो या व्यर्थ हो या बुरा हो, बुरा तो नहीं आएगा अभी, लेकिन व्यर्थ हो या कोई ऐसे, कोई खाना खाते जरूरी नहीं होता है लेकिन बुद्धि चलती है, तो ऐसे रीति से आपको पता नहीं पड़ा कि नमक ठीक था या नहीं था, तो दो काम आप मन आपका कर्म इंद्रियों द्वारा मन दो काम कर रहा था, सोच भी चल रहा था और खाना भी मुख में ही डाल रहे थे, कोई कान में या आंख में नहीं जा रहा था मुख में ही जा रहा था। तो आप एकाग्र नहीं थे, बुद्धि आपकी बिजी दूसरे तरफ थी। इसी रीति से बाबा कहता है, अगर कुछ भी शरीर में होता है तो शरीर अपने तरफ खींचे नहीं, आप अपने उसी मगन में हो, जो आप बाबा के याद में हो। विशेष कर्म तपस्या माना बाबा की याद, तो बाबा के याद में इतने आप लगन में मग्न हो, जो आपको वो कुछ भी अपने तरफ खींचेगा नहीं। हाथ चला माखी गई, लेकिन आपकी बुद्धि नहीं हिलेंगी, बुद्धि में वही बाबा की याद होंगी। इसको कहा जाता है मन बुद्धि की एकाग्रता, और ये एकाग्रता ही तपस्या। तपस्या माना एकाग्रता, तपस्या माना एकांतवासी, एक के अंत में लगे रहना। और कोई भी बात के अंत में आप जाओ, आपको पता भी नहीं पड़ेगा बाहर क्या हो रहा है, उसी में ही होंगे। अनुभव तो है ना सभी को, कोई ना कोई समय ये तो अनुभव है सभी को अनुभव। खाना खाते या कोई भी काम करते, जब मन बुद्धि दूसरे तरफ बिजी हो जाता है तो उस तरफ कर भी रहे हैं, लेकिन न्यारे हो करके। तो ऐसे बाबा कहता है कि तपस्या में जब आप बैठते हो तो आप क्या मन और बुद्धि जो है वो चंचल नहीं होना चाहिए। समझो कोई आया, कोई उठा, हमारी ऐसे आंख गई, कांध हिला, माना मन बुद्धि ने काम किया ना, ये जा रहा है ये आ रहा है। अभी हमारा मन बुद्धि क्यों जाता है, ड्यूटी है, ड्यूटी तो है नहीं, लेकिन मन चंचल है इसलिए जाता है। क्या हुआ क्या हुआ, थोड़ा सा आवाज बाहर होगा सबका कान ऐसे हो जाएगा, क्या हुआ यहाँ आवाज आया। तो ये मन बुद्धि अपने कंट्रोल में नहीं है। तपस्या का अर्थ है लगन में मग्न हो जाना। जो मग्न होता है ना, उसको कोई सुध बुध नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल देते हैं, तो हो गई लगन में मगन, मीरा के लिए कहते हैं ना लगन में मगन हो गई। मगन हो गई माना मन बुद्धि पूरा जिस जो सोच कर रही है उसमें मगन हो गए, और कहां भी बुद्धि हिलेंगी नहीं, मन हिलेगा नहीं। तो ऐसी तपस्या है आपकी, हाँ? इसको कहा जाता है तपस्या। और तपस्या ऐसी अगर हमारी है तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, क्योंकि तपस्या में एक तो दृष्टि, वृत्ति और स्मृति, स्मृति है बाबा की, और वृत्ति में ये है, ये सब आत्माएं, और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये नारी है, ये नर है, ये काला है, ये क्रिश्चियन है, ये बुद्धि है, कहां भी बुद्धि नहीं जाएंगी। ये ही किसको भी देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे। जैसे ये भी मीठी बाबा की प्यारी आत्मा है, बाबा की प्यारी आत्माएं, बस वो ही दिखाई देगा, आत्मा ही दिखाई देगा। और शरीर के अंदर जैसे हम देखो बाबा आता है, तो हम ब्रिकुटी के बीच में क्या देखेंगे, बाबा को ही देखेंगे ना, बाप दादा को, और तो कहां नहीं देखेंगे ना। किशिकिल को देखेंगे, भाई ये आंखें ऐसी है, नाक ऐसा है, ये देखेंगे, या ब्रिकुटी के बीच में बाप दादा ही देखेंगे, अभ्यास है ना। ऐसे हम एक दो को भी देखते हैं, तो यही देखें कि आत्मा, आत्मा से बात कर रहा हूं, आत्मा को देख रहा हूं, आत्मा के संपर्क में आ रहा हूं। ये आत्मा के ज्ञान बुद्धि में होगा तभी तपस्या हो सकती। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं याद है तो परमात्मा तो याद आ ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का ही बाप परमात्मा है। और कोई बातों में अगर हम जाते हैं शरीर के बान में, तो शरीर का पिता तो शिव बाबा है ही नहीं, तो कनेक्शन कैसे होगा। क्योंकि हमारी बुद्धि है शरीर भान में, तो कनेक्शन आत्मा का परमात्मा से होना है या शरीर का परमात्मा से होना है। जैसे हम मिसाल देते हैं ना प्रदर्शनी में, भाई ये तार है, तार का तार से कनेक्शन हमको जोड़ना है, तो पहले हम रबर को उतारेंगे, उतारेंगे ना, कि रबर से तो हम जोड़ने चाहें तो तार जुड़ेंगी, सारा मास लगा दो लेकिन तार नहीं जुड़ेंगी। क्यों? कि रबर बंधन है इसका। रबर को जब तक नहीं उतारा है आप, तब तक तार है इतनी पतली सी, लेकिन कनेक्शन तब होगा जब ये मोटा रबर उतारेंगे, नहीं तो कनेक्शन नहीं हो सकता है, करंट नहीं आ सकती है। ऐसे ही बाबा कहता है कि ये बाडी का जो रबर है ना, चमड़ी है ना, चमर चमड़ा है, चमड़ी है, इस भांड को उतारो, शरीर के भांड को छोड़ना है, शरीर को नहीं छोड़ना है। शरीर को छोड़ेंगे तो फिर आत्मा आएंगी थोड़ी, फिर दूसरे जन्म में चली जाएगी, लेकिन शरीर के भांड को भूलना है। शरीर के भांड को भूलना माना आत्मा रूप में स्थित होना और दूसरे को भी आत्मा देखना। कई भाइयों की रिपोर्ट होती है तो बहन जी वैसे तो हमारा योग बहुत अच्छा है, ब्राह्मण जीवन में भी हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब बाहर कोई चित्र देखते हैं ऐसे जो आकर्षण वाले होते हैं, गंदे वंदे, तो उस तरफ बुद्धि चली जाती है। फिर वो जो हमारी वृत्ति जो तपस्या की है ना, उसके बजाय बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है, शरीर भान में। या कोई कहते हैं बहन जी क्या करें, अभी समझो दफ्तर में बहने भी काम करती है, भाई भी काम करते हैं, बहन से बोलना ही पड़ता है, काम काज में तो बोलना पड़ेगा ना, या कहाँ भी बहने भी है, सेंटर पर भी बहने हैं, अभी बहनों से बोलना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा बहन है या पत्थर है क्या, बहन को तो देखना तो पड़ेगा ना। तो बहन को देखा और मेरी उसको बात करना होता है ना, तो आंखों को फेस को देखते हैं तो हमारी बुद्धि चंचल हो जाती है। तो बाबा से कोई ने क्वेश्चन किया था, बाबा बहनों से कनेक्शन में आते हैं ना तो थोड़ा सा किसकी विशेषता के तरफ ध्यान चला जाता है, ये योगी बहुत अच्छी है, योग तो इसी से ही लगाना, ये जब योग में बैठेंगी ना बहन तब मेरा योग लगेगा, बहुत अच्छा योग लगता है। और दूसरी बहन बैठती है तो योग नहीं लगता है। क्यों नहीं योग लगता है? आपने शरीर को देखा, आत्मा को देखा? आत्मा तो काली गौरी है ही नहीं, आत्मा तो बहुत आकर्षण वाली कोई हो, कोई ऐसी हो, आत्मा तो एक ही जैसी है सबकी, लाइट वाली, फिर बाकी किसको देखा? देह को देखा ना। तो बाबा से एक ने पूछा था, बाबा हम बात करते हैं या चित्र देखते हैं ना तो हमारा बॉडी कॉन्शियस की वृत्ति चली हो जाती है, आत्म अभिमानी नहीं बन सकते है, शरीर को देख के थोड़ा बुद्धि जाती है और बात तो करनी पड़ती है ना, बाबा हम ऐसे कैसे बात करेंगे, पाँव को ऐसे देख करके बात करेंगे क्या, बहन जी ठीक हो, ऐसे करेंगे क्या, सामने तो देखेंगे ना। तो बाबा ने उसको बहुत अच्छा उत्तर दिया, बाबा ने कहा तुमको फेस पर देख करके ही बात करती है ना, किसने भी, अभी मैं क्लास करा रही हूँ तो आपके पाँव को देख रही हूँ क्या, आपके फेस को ही देख रही हूँ ना, लेकिन कहाँ देख रही हूँ, फेस में भी आंखों के तरफ ऊपर के तरफ ही देख के बात करते हैं, नीचे थोड़ी बात करते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा मानो आप आंखों को देख करके उसे बात करते हो, बहन जी कैसे हो, और आत्मा कहाँ है? आत्मा भी तो प्रकृति के बीच में है ना, अभी मानो मैं इस भाई को देख रही हूँ, अभी मैं प्रकृति में देख रही हूँ आपके या नैनों में देख रही हूँ, फर्क आप जान सकते हो? फर्क पता पड़ेगा, एक ही साथ है ना। आंखें भी यहीं हैं और ब्रह्मकुटी के बीच में आत्मा भी यहीं है। तो बाबा ने कहा, तुम क्यों नहीं फेस में देखो? फेस में देखो, लेकिन ब्रह्मकुटी के बीच आत्मा है, यहाँ देखो ना। क्यों आंखों को देखती हो? आंखें आकर्षण करे, फेस आकर्षण करे, उसको देखते क्यों हो? ऊपर देखो ना, ब्रह्मकुटी में देखो, यहीं देखो ना। कहा हाँ बाबा, ये तो ठीक है, ऐ तो ब्रह्मकुटी आत्मा भी यही है। अभी मैं आपके ब्रह्मकुटी में देख रही हूँ या आंखों में देख रही हूँ, फर्क पता पड़ता है आपको? पड़ सकता है? पता नहीं पता पड़ सकता है? आप आत्मा को देख करके बात कर रहे हो, अच्छी बात है ना। दृष्टि देनी है भले दो ना, लेकिन आत्मा को देख करके आत्मा को दृष्टि दो ना। आंखों को क्यों देखते हो? आंखें तो एक खिड़की है, उस द्वारा भी किसको देखना है? खिड़की को देखना है या खिड़की में जो बैठा है, खड़ा है, उसको देखना है? तो आंखें तो एक खिड़की है जिस द्वारा हम देखते हैं। तो बाबा ने उसको कहा, तुम्हारी वृत्ति कभी भी चंचल नहीं होनी चाहिए। अगर तुम बात करो तो भी ब्रह्मकुटी में आत्मा को देखो, और योग लगाते हो तो भी आत्मा को देखो। आत्मा द्वारा परमात्मा के पास पहुंच सकते। तो अगर हमारी वृत्ति में बातचीत करते हुए, संपर्क में आते हुए, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाची हो, कोई भी हो, बहन मतलब दाढ़ी, लेकिन हम आत्मा रूप में देखें, तो हमारी वृत्ति चंचल हो सकती है क्या? यही तपस्या है ना। तपस्या माना वृत्ति हमारी आत्मा और परमात्मा की तरफ, ये है हमारी तपस्या। या योग को या तपस्या को, बात एक ही। तो मेरी हमारी योगी जीवन तब होंगी जब हम आत्मा आत्मा को देखते। बाबा कहते हैं, आजकल बाबा की मूल्यों में क्या है? बाबा के मूल्यों में आता है कि अशरीरी बन करके, अशरीरी स्थिति में स्थित रह के काम काज करो। अशरीरी माना शरीर का पता नहीं हो, नहीं, लेकिन शरीर की कोई भी कर्म इंद्री हमारे बाबा के याद को नीचे नहीं खींचे, इसको कहते हैं अशरीरी अवस्था। यानी हमारी वृत्ति जो है, मन का संकल्प जो है, वो और तरफ नहीं हो, बस आत्मा और शिव। आत्मा को देख रहा हो और परमात्मा से मिलन मना रहा। कामकाज तो आत्माओं से ही होगा ना, कनेक्शन में तो आत्माओं के ही आना पड़ता है ना। तो इसीलिए बाबा हमेशा हमको जब भी याद की बात बोलते है ना, तो यही कहता है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कितने वारी मुरली में ये आया है, जब भी याद की बात आएगी तब पहले शब्द बाबा यही बोलता है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो फाउंडेशन है हमारा आत्म अभिमानी। आपका पहला पहला पाठ आप सभी ने कौन सा पढ़ा, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का पढ़ा, क्योंकि फाउंडेशन जो है हमारा वो आत्मा का। पहले देह भान, ये जो 6 फुट 5 फुट का शरीर है ना, लंबा चौड़ा, इसका भान टूटे तभी परमात्मा से योग लग सकते। न दूसरे का शरीर देखे, देह देखे, न अपनी देह में आकर्षण में आ। चलो ये मिला है कर्म करने के लिए, वो कर्म करो, आधार मिला है ना। बाबा ने, आपने सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा प्रवेश हुआ, तो जब बाबा अव्यक्त हुए ना ब्रह्मा बाबा, तो बाबा के वहां से एक छोटी सी डायरी मिली, सामान इकट्ठा हुआ ना, तो एक डायरी मिली। उस डायरी में देखा गया क्या लिखा हुआ था, तो बाबा ने जब शुरू शुरू में प्रवेशता हुई और आत्मा का ज्ञान मिला, योगी जीवन में अभ्यास किया है शुरू शुरू में, तो बाबा ने लिखा कि रोज कचहरी लगाता था। कचहरी तो समझते हो ना, दरबार, दरबार राजा नहीं लगाते हैं। ऐसे बाबा की एक एक दिन का फलानी तारीख आज की कचहरी। आत्मा राजा, आप तख्त पर बैठ गए, तख्त पर आ गए। फिर बाबा ये मन महामंत्री, बुद्धि मंत्री, ये हाथ मंत्री, ये सारे मंत्री से बाबा रोज कचहरी रात को करता था मन में। ऐसे बाहर थोड़ी, ये मन की बात है। तो मन में वो कचहरी करता था, बताओ हे महामंत्री मन, तुम बताओ सारा दिन आपका कारोबार ठीक हुआ? कोई खिटखिट हुई? कोई मैंने मन फालतू सोचे, व्यर्थ या नेगेटिव सोचे, बुरा किसके प्रति सोचे, तो कारोबार मन की ठीक नहीं हुई ना। तो महामंत्री तुम सुनाओ, तुम्हारी आज कारोबार ठीक रही? एक एक कर्म इंद्री को ऑर्डर करता था, बताओ। तो रोज एक एक डेट की बाबा की ये दरबार कचहरी वो डायरी में लिख, सारी डायरी में यही था, फलानी तारीख दरबार, फलानी तारीख दरबार लगी। तो बाबा जो कहते हैं ना, रात को पोता मिल देखो, ये दरबार है ना। तो आप दरबार लगाते हो, महामंत्री मन से पूछते हो कैसे चले, कि जो आया बस गए और सोए बस कदम, ऐसे तो नहीं। इसी को बाबा कहते चेकिंग करो। राजा बन करके आज भी था ना, स्वराज की महिमा कल थी ना, स्वराज से क्या क्या होता है, कल की मुरली थी ना अव्यक्त स्वराज के प्रति। तो स्वराज का अर्थ क्या है? स्व माना आत्मा, उसका राज है, आत्मा राज है। स्व है ना, मैं आत्मा हूं ना, तो स्वराज हुआ ना, स्व आत्मा का राज। तो स्वराज हमारे को बाबा ने स्वराज दे दिया है, स्वराज अधिकारी बाबा ने हमको बना दिया है। बना दिया है ना कि नहीं? बने हो ना, स्वराज मिला है? मिला है? हाँ जी तो बोलो। हाँ, स्वराज, क्योंकि स्वराज नहीं तो विश्व का राज नहीं। एक बारी बाबा से पूछा किसने, बाबा को कहा, बाबा आप बाबा कहते हैं ना कभी कभी मुरली में, तो कोई भी बच्चा मेरे से आके पूछ सकता है कि बाबा मैं भविष्य में क्या बनूंगा, राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा, कहते हैं ना मुरली में कभी कभी बाबा। तो कई बच्चों को विचार होता है कि हम पूछे तो सही, बाबा से हम भी पूछें कि मैं क्या बनूंगा, प्रजा बनूंगा, राजा बनूंगा, पता तो पड़ जाए ना क्या बनूंगा। तो बाबा ने उसको जवाब दिया अव्यक्त बाबा की। तो बाबा ने उसको कहा कि तुम्हारे पास दर्पण है? तो सोचने लगा कौन सी दर्पण है। बाबा ने कहा मैंने तो दर्पण दी है, उस दर्पण में ही देखो ना तुम क्या बनेगा। जो नारद का नहीं मिसाल देते, आईने में देखा तो मैं तो बंदर हूँ। तो बाबा ने कहा आपके पास दर्पण नहीं है जो देख सको तो मैं क्या बनूंगा। एक अभी 7-8 दिन पहले एक स्लोगन आया था, उस स्लोगन में बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं कि कर्म ही आपका दर्पण, कर्म रूपी दर्पण में अपना मुखरा देखो कि मैं कौन हूँ, राजा हूँ या प्रजा हूँ या क्या हूँ। और वैसे भी देखो अपने को, आप इससे चेक कर सकते हो बाबा से पूछने की भी जरूरत नहीं, किसी दादी बादी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही अपने को देख सकते हो। स्वराज के आधार पर हमको विश्व का राज मिलेगा, ये तो पक्का है ना। स्वराज नहीं तो विश्व राज नहीं, ठीक है। तो स्वराज यानी स्व आत्मा का इस कर्म इंद्रियों के ऊपर राज, ठीक है ना, तभी प्रजा पर राज आप कर सकेंगे। तो आप इससे देखो, जो आपकी विशेष कर्म इंद्रिया है, सूक्ष्म इंद्रिया है, स्थूल इंद्रिया है, वो आपके वश में है। समझो मन आपका चंचल है तो महामंत्री आपके कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है, आंखें आपको देख धोखा देती है, आंखें भी तो धोखा देती है ना, मुख भी धोखा देते हैं। फालतू बोलना ये क्या है, जो काम की बात नहीं है उसमें समय लगाना, माना मुख अपने कंट्रोल में नहीं है, कान अपने कंट्रोल में नहीं है। जो भी बातें होंगी ना, जो हमारे कनेक्शन की भी बातें नहीं है, लेकिन कथा सुनने का 63 जन्म का हमारा अभ्यास है, कथा कीर्तन ही किया होगा ना, और क्या किया होगा। तो अभ्यास होने के कारण जो फालतू होंगी ना बातें, दो बातें कर रहे हैं मानो, ऐसा हुआ, ये जो हुआ ना ये ऐसा था, ये ऐसा किया था इसने, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये है रामायण और उसकी कथा। फालतू बातों का कानों से सुनना, इंटरेस्ट लेना, ये बाबा कहते हैं ये कथा में टाइम गमाए। तो कान हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हमको सुनना नहीं चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट आ जाता है, हाँ हाँ हमको तो पता ही नहीं था, अच्छा किया तुमने सुना दिया। ऐसा भी होता है, अरे तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरी तो आंखें ही बंद थी, आपने बहुत अच्छी खबरें सुनाई, अच्छी खबरें सुनाई या नीचे गिराया। तो ये कान अपने कंट्रोल में नहीं है, तो तपस्या कौन सी हुई, स्वराज कहाँ है आपका। आंखें धोखा दे गई, मन संकल्प धोखा दे दिया, कान ने धोखा दे दिया, मुख ने धोखा दे दिया, तो आप राजा कैसे बनेंगे, बन सकेंगे। जिसका स्वराज पर अधिकार नहीं, उसका विश्व पर राज कैसे होगा, अधिकार कैसे जमा सकेंगे। तो बाबा कहते ये दर्पण तो मैंने आपको दे दिया है, अपने आप को देखो, कम से कम ये कर्म इंद्रियों को तो जीत लो, चलो दूसरी बात विषयों की बात छोड़ो, अपने को तो कंट्रोल में लाओ। हम दादी, हम चाहते नहीं थे, लेकिन इन्होंने मेरे को फंसा दिया, तो देखो ना, सुनो तो सही ना क्या क्या हो रहा है। मेरी इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मेरे को सुनना ही पड़ा। क्यों, हमारा अपने कानों के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, सुन लिया क्यों। दादी बड़ी ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई, क्लास करा रही थी तो दादी ने कहा, दुनिया वाले कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल लो, ठीक है ना, कहावत तो ऐसे ही है ना। दादी ने कहा, मैं कहती हूँ कि इस कान से इस कान तक निकालेंगे तो बीच में मन बुद्धि है, तो उसमें तो अंदर चला जाएगा, इसीलिए इस तक भी नहीं जाने दो, जिस कान से सुना उस कान से ही निकालो, ऐसे नहीं अंदर चला जावे और फिर उसकी कोशिश करो। तो ये बात हमको बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा इतना भी टाइम क्यों जावे, ये राइट है, हमारा समय तो बड़ा कीमती है, एक एक सेकंड में हम कदम में पदम बना सकते हैं, तो हम तो कहेंगे ऐसे ही बस ऐसे ही कह देते, चला देंगे, मेजोरिटी बहुत होशियार होते हैं जवाब देने वाले, कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी, ऐसे ही बस खड़े थे, बस उसने कहा मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, कान में गया। हाँ कान में गया तो सही, वही गया तो वो चलेगा ना, लेकिन जवाब देंगे ऐसे ही, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं, ऐसे ऐसे ये चलाते क्यों हो, अपने को धोखा देते हो ना। तो अपने कंट्रोल में अपनी कर्म इंद्रियां है या नहीं है ये तो चेक करो ना, कौन सी कर्म इंद्रियां मुझे बार बार धोखा देती है ये भी चेक करो। और एक विशेष कर्म इंद्रियां जरूर होती है, आदत जिसको हम कहते हैं, आदत से मजबूर, किसको रुचि भी नहीं होगी लेकिन वो संघ के दोष में आके सुन लेगा, बोल भी लेगा, और पूछो तो कहेंगे मेरे को रुचि नहीं थी लेकिन उन्होंने कहा ना संगठन को छोड़ू कैसे, अभी चार भाई अच्छे अच्छे आए, उसने सुनाया मैंने समझा अच्छी बात सुनाएंगे। अरे शुरू किया तभी समझ जाओ ना अच्छी है या व्यर्थ है, सुन लिया अपने इंटरेस्ट से, हाँ हाँ उसमें बहुत रुचि लेते हैं, हाँ ऐसा हुआ ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने, मैं भी होशियार हो जाऊंगा, होशियार होगा या पतन होगा। तो अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कितना हमारा कंट्रोल है ये अपने आप को देखो। तपस्या स्वरूप प्रत्यक्ष तब होगा जब आपका अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होगा, और कंट्रोल होगा तो आत्मा स्वरूप में होंगे तभी कंट्रोल हो सकते, मालिक ही नहीं बनेंगे तो आपकी कर्म इंद्रियां आपके आर्डर पर चलेंगी क्यों। पहले मालिक अपने मालिकपन में तो ठहरो, अगर मालिक अपने मालिकपन में नहीं होता है तो उसके फैक्ट्री और इंडस्ट्री और बिजनेस का और घर का भी क्या हाल होता है, नौकर बनता है मालिक, मालिक बन जाता है गुलाम, सारा घर बर्बाद हो जाता है, फैक्ट्री बर्बाद हो जाती है, तो हमारी भी तो सारा खाता खत्म हो जाता है ना, कमाई सारी खत्म हो जाती है, बर्बादी हो गई ना। इसीलिए तपस्या स्वरूप बनना है, सिर्फ तपस्या करने वाले नहीं बन। संगठन का फायदा होता है, जैसे हमारा थर्ड संडे है, बाबा ने मुकरर किया है भाई सभी को तपस्या में संगठित रूप में बैठना है, क्योंकि संगठन की ज्वाला रूप होती है ना, संगठन एक दीपक जलाओ और इतने दीपक जल के जब जलते हैं कितना अच्छा लगता है, जब हम वो करते हैं ना उद्घाटन वगैरह तो कितने दीपक जगाते हैं, सिर्फ एक दीपक तो नहीं जगाते हैं, सभी दीपक जगाते, कितनी सीन अच्छी लगती है जब उद्घाटन में सभी दीपक जग जाते हैं, तो सीन कितनी अच्छी लगती है संगठन की। तो ऐसे बाबा हमको ज्वाला रूप बनाने के लिए संगठन कई शक्ति का भी अनुभव कराता है, लेकिन तपस्या माना सदा आत्म स्वरूप में स्थित होके, वो तो ऐसे आसन में स्थित होते हैं, बाबा कहते हैं आपका आसन है देही अवमानी के स्मृति का आसन है, बस मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं देही हूँ, देह नहीं हूँ, इस स्मृति के सीट पर बैठ जाओ, ये आसन पर बैठ जाओ, बिरकुटी भी एक आसन है, इस आसन पर आत्मा बैठी, बस इस आसन पर बैठ जाओ, मैं आत्मा देख रही हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा को देख रही हूँ, आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, ये पाठ बिल्कुल पक्का होना चाहिए, और ये ही तपस्या है। अगर ये तपस्या आपने नहीं की, कुछ नहीं किया, तो तपस्या स्वरूप बनो, यानी आपके चलने से आप चलो, किसको दृष्टि दो तो आपके दृष्टि में वो फीलिंग आवे, महसूसता आवे, तो ये आत्मा रूप में देख रहा है, ये आत्मा रूप की बातें कर रहा है, ये आत्मा वृत्ति में रहता है। बस शुभ वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना, वृत्ति, यही अनुभव दूसरे को भी। अभी दादियों को क्यों कहते दृष्टि दो, अभी दृष्टि आपकी भी तो दृष्टि है ना, क्यों दादियों से कहते हो दृष्टि दो, क्यों? कि वो आत्म अवमानी बन के आत्मा को देखती है, आत्मा आत्मा को देखती है, इसलिए उस आत्मक दृष्टि में ताकत है, अनुभूति होती है शांति की, प्रेम की, निस्वार्थ आत्मक प्रेम की, बॉडी कॉन्शियस वाला प्रेम नहीं। तो ये अनुभव तो होता है ना आप सभी को। अभी बाबा के दृष्टि के लिए कितना तरफते है, स्टेज पर आवे, स्टेज पर आवे, अभी बाबा दृष्टि तो देता ही है, फिर भी क्यों समझते हैं? क्योंकि दृष्टि में ताकत है, आत्मक दृष्टि है, वो तो परमात्मा दृष्टि। तो आपके दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और फिर है कृति, माना कर्म, ये बिल्कुल आत्मक अवमानी होने चाहिए, तब भी आपके तपस्या स्वरूप जो है वो प्रत्यक्ष हो सकेगा, नहीं तो तपस्या स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और बाबा तो चाहता ही है कि सभी जो भी मेरे बच्चे हैं इतने, वो सब जहां भी जाए तो आत्मक वातावरण फैला, ये झगड़ा, ये अशांति सारा बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण है। तो सभी को क्लियर हुआ तपस्या क्या हा? तो अभी से तपस्वी स्वरूप बन के जाना, सिर्फ तपस्या करने वाले नहीं, तपस्वी स्वरूप निरंतर हमारे तपस्या, इसी लक्ष्य को लेकर के अपने इस तपस्या को अविनाशी बनाना, अल्प काल की नहीं सदा काल। अच्छा, ओम शांति।